ओम शांति। संध्या का समय है और आज का विषय भी ऐसा है, जो स्थिति को हम बड़ी सहजता से अनुभव कर सकते हैं। यूं तो अनेक बार उसका अनुभव किया होगा, लेकिन फिर भी जब भट्टी में आते हैं और विशेष अपने सामने एक विषय को लेकर हम याद में बैठते हैं तो अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। और ऐसे ही अनुभव कराने के लिए न केवल क्लास, लेकिन अनुभव युक्त क्लास और अनुभव कराने के लिए आज हमारे बीच में है आदरणीय गीता बहन। आज आपने गीता बहन, हम उनको 4.5 से 5 चिंतन के लिए विषय देते हैं, तो आज का चिंतन इनको डबल लाइट के लिए कहा था कि लिखना है इनको, उसके बाद आधा घंटा योग करते हैं। तो गीता बहन से आप परिचित हैं, बहुत ही ज्ञान की गुह्यता और ज्ञान की स्पष्टता, जैसा इनका नाम है वैसा उनका जीवन है। आपने वैसे आप ओरिजिनली गुजरात से हैं, वहां भी सेंटर पर अनेक वर्षों तक, गुजरात में भावनगर में अनेक वर्षों तक सेवाओं में वृद्धि कर, उसके पश्चात जब ज्ञान सरोवर बना तो आप ज्ञान सरोवर में आई। आप सभी जानते हैं जब भी हम वहां जाते थे वो आप हमें मिलती थी रिसेप्शन पर, और वर्तमान समय आप शांति वन में सेवाएं दे रही हैं। आपकी विशेषता है कि आप कोई भी विषय को बहुत ही बाबा के ज्ञान से बहुत अच्छी तरह से अपने अनुभव के आधार से उसको बड़ी सरलता से स्पष्ट करते हैं। गीता बहन, योग शिविर और जो हमारे विंग्स के कार्यक्रम होते हैं तथा अन्य कार्यक्रम जो यहाँ पर बाबा के सीजन में हमेशा ही उनके क्लासेस सुनने को मिलते हैं, तो आज भी इस विषय को स्पष्ट करेंगी फरिश्ता स्थिति, और स्पष्ट करने के बाद आपको कमेंट्री के द्वारा उसका अनुभव भी कराएंगी। आदरणीय गीता बहन,
ओम शांति। वर्तमान समय अनुसार फरिश्ता बनने में ही मजा है, आप खुद भी अनुभव कर रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन संसार की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही विकृत होती जा रही है, विपरीत और प्रतिकूल तो है ही पर विकृत होती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों के प्रभाव से अगर मुक्त रहना है तो हमारा फरिश्ता बनना बहुत जरूरी है, वरना ये परिस्थितियां हमारे चिंतन को बहुत फास्ट बनाती हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे आसपास का संसार भी बहुत तेजी से बदल रहा है और हर व्यक्ति स्वयं भी भीतर से बदल रहा है। वैल्यूज कम हो रहे हैं और भौतिकता या दैहिक भाव बहुत बढ़ रहे हैं, तो इन सब परिस्थितियों में अगर साक्षी रहना है, उनके प्रभाव से मुक्त रहना है और उन आत्माओं प्रति शुभ भावना रखनी है तो हमारी फरिश्ता स्थिति बहुत जरूरी है। न्यारापन भी होता है उसमें और हम अपनी ऊंची इस रूहानी स्थिति से उन आत्माओं को मदद भी कर सकते हैं, मनसा से सेवा भी कर सकते हैं। तो परिस्थितियां कहो चाहे व्यक्ति कहो, समय अनुसार ये फरिश्ता जीवन हमारा बने वो बहुत जरूरी है। ब्राह्मण तो हम है ही, ब्रह्मा मुखवंशावली तो हम है ही, शूद्र जीवन से हम बहुत दूर हो गए। हमारा आहार विहार व्यवहार, हमारा पहरवाइश संग दिनचर्या, सब बातों में परिवर्तन हमने किया है, किया है ना? हमने सिर्फ जीवन में ज्ञान योग ऐड नहीं किया है, लेकिन हमने ज्ञान योग के अनुरूप अपना जीवन बनाया है। अब ब्राह्मण जीवन से भी अटक नहीं जाना है। हम खुश हैं इस ब्राह्मण जीवन से क्योंकि हमारी जीवन पवित्र है, हम ज्ञानी हैं, योगी हैं, सेवाधारी हैं, बहुत अच्छी जीवन है हमारी। पर ये हमारी फाइनल मंजिल नहीं, ये पहला स्टेप है। शूद्र से ब्राह्मण बनना ये पहला स्टेप है, पर हमारा लक्ष्य तो है ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। ब्रह्मा बाप समान बनना, तो फरिश्ता बनना माना क्या करना है? फरिश्ता बनना माना हमें क्या करना है? शूद्र से ब्राह्मण बनना वो बड़ा स्पष्ट था कि जो अपवित्र असत्य जो असार है वो हमें छोड़ना है, और जो सत्य है सार है श्रेष्ठ है वो हमें जीवन में लाना है। पर ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता बनना है तो हमें जीवन में क्या परिवर्तन करना है? हम जो भी ब्राह्मण जीवन में कर रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में हम क्या क्या कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, योग तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, सेवा करते हैं, हम भगवान के सहयोगी बनते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें और रिफाइननेस लाना, उसको और क्वालिटी बनाना, उसको और एकाग्र और शक्तिशाली बनाना, वो है फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ। वो है फरिश्ता बनना, ताकि हम टोटल, आप जानते हैं कि जो चीज जितनी रिफाइन करते हैं, डबल प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइन माना फाइन से रिफाइन और अच्छा, तो जितना जो प्यूरिफाई शुद्ध विशुद्ध बनता है वो ऑटोमेटिक हल्का बन जाता है। शक्तिशाली भी बन जाता और लाइट भी बन जाता है। तो अंतर्मुखी बनकर हम सभी भाई बहनों को स्वयं को देखना है कि अब हमें भगवान मिल चुके हैं, सत्य ज्ञान मिल चुका है, अब हमें कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, अब हमें तन से मन से भटकने की जरूरत नहीं, स्वयं भगवान रोज हमें सत्य पढ़ाते हैं। अब उस पढ़ाई में अपने आप को हम देखें कि एक तो आत्माभिमानी बन बाबा की याद में अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ना, मुरली तो सुनते हैं ना सभी, पर आप चेक करते जाना कि किस अवस्था में हम सुनते हैं। जितना ये रोज की प्रैक्टिस हो जाएगी कि बाबा के सामने जब भी हम बैठे आत्माभिमानी बनकर बैठे और बाबा की याद में बाबा के महावाक्य सुने, ये अभ्यास हमें योग में भी एकाग्र होने में मदद करता है। जो भाई बहने योग अभ्यास के समय एकाग्र नहीं हो पाते हैं, उनको रोज मुरली के समय इस विधि से मुरली सुननी चाहिए। बाबा का एक एक महावाक्य जैसे कमेंट्री है और हम उस अनुभव में स्थित होते जाएं। निश्चयात्मक बुद्धि से पढ़ाई पढ़ना, और ज्ञान के एक एक रतन को सारा दिन अभ्यास मिला। हमारी दादियां क्या बताती, पिछले सीजन में भी बाबा ने कई बार हमें बताया कि रोज जो बाबा कहते हैं, मुरली में सुबह सुबह हमें बताते हैं ना सारी बात। आज भी बाबा ने क्या कहा, हाँ, कि अंतर्मुखी बनकर खुद को चेक कर, कौन कौन सी खामी है, कहाँ तुम अटक जाते, किस खामी के कारण बुद्धि योग भटक जाता है। आज बाबा ने कितनी बार कहा, फ्लॉलेस बनना है। तो जो रोज सुबह बाबा हमें गाइडेंस देते हैं वो सारा दिन अभ्यास में लाना है। तो पढ़ाई को चेक कर कि सिर्फ सुनने तक है, समझने तक है, समझाने तक है, अभ्यास तक है या अनुभव तक है। अपनी पढ़ाई को चेक कर, हमारा प्रैक्टिकल जीवन बताएं, हमारा जीवन बताएं कि हम ज्ञानी योगी आत्मा हैं। हमारी तपस्या योग, रोज की दिनचर्या में दोनों चीज आप चेक करिए कि हम बैठते ही उड़ जाते हैं, बाबा में मगन हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आप लाइट हो जाएंगे, जैसे ही देह भान से डिटैच होंगे और एक बाबा में मगन होंगे तो लाइट ऑटोमेटिक हम हो जाते हैं। हमें सिर्फ बाह्य रीति लाइट होने की बात नहीं है, पर मैं आत्मा जैसे ही सभी आकर्षणों से और सभी आसक्तियों से मुक्त होती जाऊंगी, मैं ऑटोमेटिक लाइट हो जाऊंगी। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति मुझे बांधने वाली नहीं है, ना मुझे आकर्षण है ना मुझे आसक्ति है। उसके लिए चाहिए रोज क्वांटिटी ऑफ योग भी चाहिए, क्वालिटी ऑफ योग भी चाहिए। क्वांटिटी ऑफ योग माना कम से कम 2 घंटा 3 घंटा सारे दिन में बैठकर अभ्यास करना। मुझे बाबा से बहुत प्यार है पर मुझे शांति से बैठकर उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है, तो उसको प्यार कहेंगे? मैं कहूँ मुझे आपसे बहुत प्यार है पर मुझे बात करने की फुर्सत नहीं है, भाई बहने आते हैं, दो मिनट योग करेंगे, दो पॉइंट पढ़ लेंगे, बस बहन जी जाता हूँ, नहीं, एक लंबा अभ्यास चाहिए। चलो भाई आप नए हैं, अभ्यास शुरू करें, इसलिए बहने कहती है कि चलो भाई कम से कम आप दो मिनट तो आओ, बाबा के दो महावाक्य तो पढ़ो। पर अब तो हमारी लगन बढ़नी चाहिए ना, तो अमृत वेले एक घंटा, संध्या के समय एक घंटा, मुरली क्लास के समय आधा घंटा, रात को सोने से पहले, माना रोज ये दो तीन घंटे का अभ्यास होगा तो मन, मैं आत्मा, योगी बनती जाऊंगी, मन समेटता जाएगा। अगर मन समेटने का अभ्यास ही नहीं है, आप देखो सारे दिन में मन और बुद्धि समेटने का अभ्यास कितना है, कितना है? बाकी तो सारे कारोबार में मन और बुद्धि विस्तार में ले जाना है ना? समेटने का अभ्यास तो सिर्फ बाबा की याद का ही है। हम जितना अपने को समेटेंगे, उतने हल्के होते जाएंगे। देखो आप सारा साल घर में जो भी चीज आती है, मिलती है, हम घर में डालते रहते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं। फिर दीपावली आती है, सफाई करते हैं, करते हैं ना, तो हम सारा घर का सामान सॉर्ट आउट करते हैं, जो जरूरी है वो रखते हैं और बाकी निकाल देते हैं। तो बड़ा हल्का लगता है कि हाँ अब घर थोड़ा खाली हुआ, भरा भरा होता है तो भारी लगता है। अपने जीवन को भी देखना है, हमें मन को समेटते जाना है। इच्छाएं कम, शौक कम, लक्ष्य क्या है? बाप समान फरिश्ता बनना, तो उसके अनुकूल जो बातें हैं वो रखो, बाकी की बातें निकालते जाओ, न्यारे होते जाओ। देखो पहले व्यक्ति को होता है मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगी, इस प्रसंग में भी मुझे जाना पड़ेगा, इस शादी में भी जाना पड़ेगा, इसमें भी इसमें भी, है ना? फिर धीरे धीरे हम उपराम होते हैं, न्यारे होते हैं, दूसरों को जिम्मेवारियां देते जाते हैं। अब वो समय है, योग माना मन समेटना, इच्छाएं समेटना, विचारों को समेटना। तो दोनों चीज देखो, मन समेट रहे हैं और जीवन विस्तार का है तो योग नहीं लगेगा। जब मन समेटना है तो जीवन भी समेटना है। अनावश्यक है वो निकालो, जो आवश्यक है उसके प्रति फोकस हो जाओ, केंद्रित हो जाओ। योग सिर्फ अभ्यास नहीं है कि जब अभ्यास करे तब मन समेटे और सारा दिन कहीं भी मन जाए। इसलिए योग सिर्फ अभ्यास नहीं है, योग जीवन पद्धति है। फरिश्ता केवल स्थिति नहीं है, फरिश्ता जीवन पद्धति है। समझ में आया? सिर्फ योग में फरिश्ता नहीं बनना है, जीवन में फरिश्ता बनना है। हमारी लाइफस्टाइल फरिश्ते की, हमारा आचार विचार व्यवहार प्रवृत्ति संबंध सब कुछ फरिश्ते का। अपने त्याग को चेक करो। बाबा के बनते हैं तो जो बुराई है वो छोड़ते हैं ना, त्याग करते। जो भी हमने त्याग किया है कि कर्मेंद्रिय से हमें ये नहीं करना है, बराबर सबको पता है क्या क्या नहीं करना है, पता है ना? रोज मुरली में बाबा बताते। फरिश्ता बनना माना जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना वो मन से भी नहीं करना। भाई मुख से बाजार का, शादी का, होटल का खाना बंद कर दिया पर मन से खाते रहते, वो रस और स्वाद याद आते हैं। मन से त्याग, अमृत वेले की नींद हम छोड़ते हैं। भाई बहने कहते हैं सबसे मीठी नींद अमृत वेले ही आती है बहन जी, और बाबा उसी समय उठाता है। हम रोज उठते हैं और रोज बाबा को कहते हैं कि आप अमृत वेले ही उठाते हो रोज। पर अब अभ्यास करते करते हमारी ये अवस्था बन जाए कि जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना वो मुझे मनसा भी नहीं करना। कर्म में ब्रह्मचर्य है, मन से भी ब्रह्मचर्य। तो मन का युद्ध, अंदर जो युद्ध है ना, वो खत्म हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। मन में कोई युद्ध नहीं, युद्ध क्यों चलता है? बाबा जो कहते हैं और हमारी इच्छाएं, दोनों में अंतर है। बाबा तो कहते हैं लेकिन करके हमारे विचार इच्छा अलग होते हैं, तब युद्ध चलता है। जब दिल से स्वीकार हो जाता है कि जो बाबा कहे वो ही मेरा मन कहे, मुझे और कोई इच्छा नहीं, मेरा और कोई अलग विचार नहीं, तो जो मानसिक युद्ध है, संघर्ष है, खींचातान है, वो खत्म हो जाएगा, फ्री। हम निरंतर याद में रह सकेंगे। तो देखो, त्याग हमें और रिफाइन करना, हमारी सेवा, हम हर एक सेवा करते हैं ना, पर बाबा क्या कहते हैं, तीनों सेवा एक साथ। कर्मणा सेवा करते हैं, यज्ञ सेवा जिसको हम कहते हैं, यज्ञ सेवा करते भी मन भी बाबा की याद की सेवा करे। हम मुख से ज्ञान सुनाते हैं पर उस अनुभव में भी रहे, याद में रहते हुए मैं ज्ञान सुना। हमें महसूस हो कि मैं रूहानी सेवाधारी, सेवाधारी तो दुनिया में बहुत है, हर संस्था में है, हर धर्म संप्रदाय में लोग बहुत सेवा करते हैं ना, ऐसे नहीं है सिर्फ हम सेवा करते, उनको तो सत्य भी नहीं मिला है, भगवान भी नहीं मिला है, एक मनुष्य गुरु के कहने पर भी कितनी सेवा करते हैं। सेवाधारी तो बहुत है, हमारी विशेषता क्या हो, हम रूहानी सेवाधारी। कितनी भी सेवा करें, तन से, मन से, धन से, वाचा से, संबंध से, पर सेवा भी मुझे बांधे नहीं, इसलिए निमित्त भाव से सेवा करते, सेवा करते भी मुझे लाइट रहना है, निमित्त भाव चाहिए, करने के बाद भी निर्माणता चाहिए, हमें रोज ये पाठ पक्का करना है कि सेवा बाबा की है, हम निमित्त हैं, हमें दिल से करनी है, जिम्मेवारी से करनी है, पर निमित्त भाव से करनी है। और जो बाबा ने हमें कहा है कि चलन और चेहरे से सेवा, सिर्फ मुख ज्ञान नहीं बोले, हमारा चरित्र ज्ञान बोले, हमारा जीवन ज्ञान बोले, चलन और चेहरे से सेवा, लगे कि ये कोई लौकिक सांसारिक भौतिक व्यक्ति नहीं है, ये अलौकिक कोई रूहानी व्यक्ति, हम साधारण नहीं दिखने चाहिए, हम रूहानी आध्यात्मिक न्यारे प्यारे अनुभव होने चाहिए, हम दृष्टि से सेवा कर सके, लक्ष्य रखेंगे तो होगा, हमें दृष्टि से रूहानियत का अनुभव कराना, हमें मन सा सेवा करनी है, ये एक प्रैक्टिस हो जाए, एक लक्ष्य रहे, तो आपको सेवा बांधेगी भी नहीं, आप न्यारे प्यारे हल्के रह सकेंगे, बुद्धि योग सदा ऊपर रहेगा, बाबा याद रहे, कहते हैं वे फरिश्ते माना जो उड़ते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, आसमान में विचरण करते हैं, इसका अर्थ क्या है कि वे सदा ऊंची मनोस्थिति में रहते हैं, वे नीचे की हल्की साधारण बातों में समय संकल्प वेस्ट नहीं करते, हमने बताया ना कि वर्तमान समय जब परिवार हमारा अलौकिक परिवार भी बेहद का बन गया है, वैरायटी पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं, जब विस्तार हो जाता है तो ऑटोमेटिक वैरायटी तो देखने को मिलते हैं ना, उसमें फरिश्ता बनकर रहने से हमारी मनसा भी डिस्टर्ब नहीं होगी और हम इस बेहद परिवार में एग्जाम्पल बनकर रह सकेंगे। हमें देखकर सबको बार बार प्रेरणा मिलेगी कि हमें कैसा रूहानी न्यारा प्यारा रहना है। हम सहयोग देते हैं बाबा के कार्य में, पर जमा करके भी मैं आत्मा और मुक्त बनूं। अगर मैं पन से सहयोग देते हैं तो वो आत्मा को बांधेगा, भारी बनाएगा। बाबा कहते हैं ना, वो जमा नहीं होगा, क्योंकि मैंने दिया तो हमने तो छोड़ा ही नहीं ना, तो जमा कैसे हुआ। जब मेरा ये सोचना कहना खत्म हो तब तो बाबा का वो बने और जमा हो। फिर धन दिया, साधन दिया, समय दिया, गुण कला दी, तन लगाया, कुछ भी, पर बाबा कहते हैं ना कि मैंने किया मैंने दिया ये नहीं। तो हम हमारा जमा होगा और हम लाइट होंगे। वास्तव में ये है फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ। आज आपने डबल लाइट स्थिति का चिंतन किया ना? डबल लाइट माना मैं आत्मा, लाइट ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अब मैं ये मिट्टी नहीं हूं, मैं स्वयं ज्योति बिंदु हूं और ज्योति के आकार में हूं। ज्योति के वतन की वासी हूं, परम ज्योति की संतान हूं। ये बार बार स्मृति में आवे। और दूसरा लाइट माना हल्का, जितना डिटैच उतने हम हल्के बनते। जो सारी बात मैंने बताई प्रैक्टिकल जीवन में, जितना अनासक्त बनते, आकर्षणों से मुक्त बनते, हम लाइट होते हैं। और बाबा ने हम आत्माओं को हल्का बनने का, कि आत्मा हल्की हो जाए, उसका पुरुषार्थ तीन चीज बाबा ने बताई। हमारा एक पुरुषार्थ है ज्ञान से पहले तक पूर्व जन्मों में और इस जीवन में, ज्ञान से पहले तक जो भी विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, उसके फल स्वरूप जो विकारी संस्कार आत्मा में बने हैं, जिसको हम पुराने संस्कार कहते हैं, हम कहते हैं ना कि मैंने नया जन्म लिया, ब्राह्मण बने ना, फिर भी पुराने शूद्रपन के संस्कार बार बार जागते रहते हैं। तो ये जो पुराने शूद्रपन के संस्कार है, बाबा कहते हैं विकर्मों का बोझा आत्मा पर बहुत है, उसको खत्म करने के लिए एक तो बाबा ने कहा है, बाबा को याद करो, योग से विकर्म खत्म होंगे, और दूसरा देहभान में हम ना आवे, आज भी बाबा ने नहीं कहा, मुख्य है सब कमियों का कारण देहाभिमान। देहाभिमान में आने से विकारी संस्कार को जागृत होने का कारण मिल जाता है, एक्टिव होने का कारण मिल जाता है, इमर्ज होने का कारण मिल जाता है। तो वो तपस्या, इसलिए देही अभिमानीपन की तपस्या और एक बाप दूसरा न कोई। आज भी बाबा ने कहा ना कि ऐसा अभ्यास करो जो अंत में कुछ भी याद ना आए। देह में रहते हुए देही अभिमानी बनना, ये हमारे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ। इसलिए रोज अनेक बार बाबा अंडरलाइन कराते, तो वो विकर्मों के कारण बने हुई जो विकारी संस्कार है, हर एक का अपना अपना है। कोई कहेगा ना चाहते मुझे गुस्सा आ जाता, मैं समझती हूँ जानती हूँ, पर फिर भी मुझे मोह है। कोई कहता है कि गुस्सा आ जाता है, देह का आकर्षण हो जाता है, समझती हूँ संगम युग प्राप्ति का युग है, फिर भी आलस आता है। हरेक अपने आप को जानता है। आज बाबा ने कितनी बार कहा कि हरेक अपने आप को जानता है कि मेरे में कौन सी कमी है, मैं कहाँ अटक रहा हूँ। दृढ़ता से पुराने संस्कारों को खत्म करने की तपस्या करते रहना, ये पुरुषार्थ हम सब करते हैं। दूसरा, सत्कर्म जमा करते रहे, ये मौका है संगम युग में सत्कर्म करने। भक्ति में कितना दान पुण्य किया पर उतरती कला ही हुई, समय ही उतरने का था, ये समय चढ़ती कला का है। जितने सत्कर्म हम करेंगे आत्मा चढ़ती जाए, ऊंची बनती जाए। जितना सत्कर्म जमा होगा विकर्मों का उद्धार चुक्त होता जाए। लक्ष्य रहे छोटे 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 जो हम कर सकते हैं अच्छे कर्म करते जाएं, वो जमा होता जाता। तो ये दो चीज है, पूर्व जन्मों के विकर्मों के खाते को खत्म करना, दूसरा इस जन्म में ज्ञान में आने तक के जीवन में कोई 20 साल की आयु पर ज्ञान में आया, कोई 15 साल की आयु पर, कोई 35 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल की आयु पर, हर एक का अलग अलग है ना? इस जन्म का ज्ञान में आने तक के जीवन में जो हमने भूले की पाप किए, छोटे मोटे ज्ञान नहीं था ना, तो भूले तो होती रही, छोटे मोटे पाप होते रहे। बाबा कहते हैं अपनी इस जन्म की जीवन कहानी सच्चाई से लिखकर बाबा को दे दो, हल्के हो जाओ। भगवान के साथ मेरे जीवन की किताब खुली होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं मेरा बाबा, तो मेरे जीवन की कोई भी बात उनसे छिपी हुई नहीं होनी। हम लोगों ने तो प्रैक्टिकल दादियों को बताया है, निमित्तात्माओं को बताया है। कमलेश बहन को याद होगा, हमें शुरू में हर साल दो बार हम लोग निश्चय पत्र और जीवन कहानी लिख कर देते थे, इतना हम लोगों पर ध्यान रहता था प्रैक्टिकल। अब चूंकि बड़ा परिवार हो गया है, पर अगर मुझे हल्का होना है तो इस जीवन के जो भी पाप है बाबा को लिख के दे दो, और दृढ़ता कि अब ये भूले दोबारा ना। आपका मन हल्का हो जाए, क्योंकि अब ज्ञान है ना, इसलिए जीवन को हम समझ सकते हैं कि हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। मुरली में भी आता है कि अगर सच्चाई से अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख के देंगे तो आधा माफ हो जाएगा और हल्के हो जाएंगे। वैसे कर्म के सिद्धांत अनुसार माफ नहीं होता है, किया वो भुगतना ही पड़ता है, पर संगम युग में स्वयं भगवान है ना, इसलिए वो हमारा आधा माफ करता है। हम हल्के हो जाएंगे, हमारे में शक्ति भरेगी, फिर से वो भूलें हम नहीं करेंगे। और तीसरा, ज्ञान में आने के बाद, कोई एक साल से, कोई दो साल से, कोई पांच, कोई दस, पच्चीस, तीस, चालीस, पचास, है ना, हम सब कितने साल से ज्ञान में चलते हैं? हम पुरुषार्थी हैं, इस ज्ञान की जीवन में भी छोटे मोटे पाप होते हैं। चलो, सबसे बड़ा पाप विकारी बनना, वो नहीं करते। मैंने बताया ना, कर्म में हमारा कंट्रोल है, पर कई अवज्ञाएं होती हैं, कई छोटी मोटी भूलें होती हैं, सूक्ष्म पाप होते हैं, जिसका बोझ आत्मा पर चढ़ता जाता है। हम योग में सोचेंगे कि मैं उड़ रहा हूं, लाइट हूं, पर अंदर तो बोझ भरा पड़ा है, तो कैसे उड़ेंगे? तो ब्राह्मण जीवन में, माना हमारी ये जीवन साधारण नहीं है, ये बहुत ऊंची जीवन है। डायरेक्ट भगवान से हम पालना ले रहे, रोज सत्य ज्ञान हमें मिलता है। तो ये अवज्ञाएं, सूक्ष्म पाप आत्मा को भारी करते, इसलिए हमारा ये कंट्रोल रहे, संयम रहे, लक्ष्य रहे कि अब ये अवज्ञाएं, भूले पाप हमें नहीं करनी है, क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं, ब्राह्मण बनकर, ज्ञानी तो आत्मा बनकर हम जो भूल पाप करते हैं वो एक का 100 गुना। तो डरने की बात नहीं है। कई सोचते हैं, अरे ये तो ब्राह्मण बनकर मुसीबत हो गए। हाँ, मुसीबत नहीं है, ये सावधानी की बात है, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है। आप इतने ऊंचे महान बन गए हैं कि बड़ों की छोटी सी भूल भी देखते हो ना, दुनिया में जो सेलिब्रिटी लोग हैं, उनकी छोटी सी बात भी अखबार में आ जाती, बड़े हैं ना, कॉमन है, तो कौन पूछता है और कौन देखता है। हम सामान्य नहीं है, हम ज्ञानी तो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, योगी आत्मा है, हम सेवाधारी है। सारी दुनिया जानती है और बहुत ऊंची नजर से देखती है। जो दुनिया ब्रह्मा कुमारी को देखकर दरवाजा बंद कर देती थी, आज वही दुनिया ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं। वे जानते हैं इनके जैसा ऊंचा ज्ञान कहीं नहीं। कई लोग, मेहमान वीआईपी यहाँ आते हैं, वे स्पष्ट कहते हैं कि बहन जी, ऐसा ज्ञान तो किसी ने दिया ही नहीं, हमारा तो वेस्ट गया सब। ये हमारा सौभाग्य है, हमें सत्य ज्ञान रोज मिल रहा है। दुनिया हमें बहुत ऊंची नजर से देखती है। आपके भी आसपास जो रहते हैं, मित्र संबंधी हैं, सब जानते हैं, ये ज्ञान में चलते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम भगत हैं, भक्ति करते हैं और ये ज्ञान में चलते हैं, ऐसे कहते हैं। हरेक जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की धारणा बहुत ऊंची है। कई लोग आपको कहते होंगे कि भाई आप लोग कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, कहते हैं कि नहीं, तो आप सामान्य नहीं हैं, बहुत महान आत्माएं हैं बाबा के बच्चे, और हम सेवा करते हैं ये भी सारी दुनिया जानती है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से, अथक होकर दिल से सेवा करते हैं। अब हर कोई चाहता है कि भाई अपना प्रोजेक्ट पूरा करना हो तो ब्रह्मा कुमारियों से मिलकर सेवा करो, इनके सेवादारी बहुत अच्छे होते हैं। कई गुरु लोग मां मंडलेश्वर आते हैं, वो दादियों को कहते हैं, दादी ये यहाँ जो है ना इतने अच्छे भाई बहने, 8-10 हमें भी दे दीजिए, हमारा आश्रम भी अच्छा चलावे। वो ऐसे कहते, तो अब सारी दुनिया की नजर हमारे तरफ है। हम साधारण नहीं है, हम विशेष है, इसलिए छोटी छोटी अवज्ञाएं करके सूक्ष्म पापों से अपने को भारी हमें नहीं करना है ना, क्योंकि हमारी क्यों बाबा कहता है 100 गुना दंड, भगवान तो दंड देता ही नहीं है, वो तो प्यार का सागर है। पर हमारी एक भूल, अब चूंकि हम व्यक्ति नहीं हैं, हम संस्था बन गए है ना, हम तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रतिनिधि बन गए हैं, भूल मेरी होंगी और लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी में ऐसा सिखाते हैं, देखो ये रोज ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं और ये सीखते, तो पूरा किसका नाम लिया गया, तो मेरी एक की भूल का हिसाब नहीं हुआ ना, पूरे संस्था पर बात आ गई, तो 100 गुना तो हो ही गए। इसलिए जब हम इतने ऊंचे महान बने हैं तो हमारी छोटी भूलें भी बड़ी लगती है। जैसे बहुत अच्छे परिवार खानदान से बच्चा भूल करे तो लोग कहते हैं भाई इतना अच्छा तुम्हारा माँ बाप खानदान परिवार और तुम ऐसे क्यों हो। ऐसे अब हमारे से लोगों की अपेक्षा क्या है कि ये तो संपूर्ण, हर कोई हमसे ये अपेक्षा रखता है कि इनसे भूल नहीं होनी चाहिए, हम भले कुछ भी हैं, विकारों में सड़ रहे हैं, पर हमारे से चाहेंगे कि इनके अंदर अंश भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बहुत ऊंचे बाबा के बच्चे बने हैं, बहुत ऊंचे संस्था के मेंबर बने हैं, बहुत ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, बहुत ऊंची सेवा हम कर रहे हैं। अब और अपने को पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाना है, फरिश्ता माना ट्रांसपेरेंट, व्हाइट एंड लाइट, अंदर बाहर एक। हमारा जीवन इतना ट्रांसपेरेंट ताकि कहीं भी हमें देखे, कब भी देखे, वो अच्छा ही हमारे में दे। ये है डबल लाइट बनने का, फरिश्ता बनने का प्रैक्टिकल पुरुषार्थ। आप ऑटोमेटिक लाइट रहेंगे, ऑटोमेटिक आकर्षण का कारण बनेंगे। तो बनना है ना, हाँ बनना है, बरोबर जवाब तो दे नहीं रहे हैं, बनना है ना, भारी तो नहीं लग रहा, हाँ मुश्किल है नहीं। हम बहुत कुछ ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, ये लास्ट फिनिशिंग करना है, ये फाइनल फिनिशिंग है। बस ये थोड़ा 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 जो रहा हुआ है ना, वो निकल जाएगा ना, हम बिल्कुल डबल लाइट फरिश्ते बन जाएंगे। यही बाबा आप चाहते हैं हमसे, क्योंकि समय भी ड्रामा का पूरा हो रहा है। बाबा का व्यक्त पार्ट भी देखते हो ना, कम हो रहा है। इतने सालों बाबा कितनी पालना देते रहे, अब बाबा की अव्यक्त पालना भी कम हो रही। हमारी दादियां भी संपूर्ण बनती जा रही, फिर कौन बनाने वाला है। इनके होते होते हमें बन जाना है, तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सबको मधुबन में शांति से एकांत में गहरा चिंतन करेंगे, स्वदर्शन करेंगे और प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे, ताकि हर कोई महसूस करे कि अब ब्रह्मा कुमार कुमारियां योगी फरिश्ते बनते जा रहे, ज्ञानी है, पवित्र है, सेवाधारी है, ये जानते हैं। अब ये कहें कि ये तपस्वी बन गए हैं और ये फरिश्ते बनते जा रहे हैं। तो अब हम अभ्यास करेंगे, खड़े हो जाएं, पांच अभ्यास हम करेंगे और रोज की दिनचर्या में बार बार ये अभ्यास करते रहेंगे, हम जल्दी डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता बन सकेंगे। पहला अभ्यास स्वयं में मस्त रहे।
अपने असली निराकार शुद्ध सत्य अलौकिक आत्मस्वरूप में मस्त रहे। देह भान से न्यारे अपने आंतरिक अविनाशी चैतन्य स्वरूप में खोए रहे। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास एक बाबा में मगन रहे। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, वो एक ही सर्वस्व है। वो एक ही ऑलमाइटी है। मेरी सर्व संबंध एक बाबा से है। मेरी सर्व प्राप्तियां एक बाबा से है। मैं आत्मा मेरा बाबा और अब तो बाबा ही बाबा। राइट साइड घूम जाइए। तीसरा अभ्यास स्वयं की प्रवृत्ति में trusty. अन्य की प्रवृत्ति से साक्षी प्रतिदिन की प्रवृत्ति में मैं निमित्त हूँ बाबा मालिक है मुझे हर प्रवृत्ति श्रीमत पर करनी है अन्य के पार्ट से साक्षी बनना है मन से शुभ भावना रहे प्रैक्टिकली साक्षी बने मैं जानती हूँ श्रीमत पर हर कर्म करने से बाबा मेरा जिम्मेवार रहता है मेरा साथी बन जाता है राइट साइड घूम जाए चौथा अभ्यास बुद्धि से सदा वतन में रहे भल शरीर से मैं इस दुनिया में रहती हूँ पर मन और बुद्धि से या अव्यक्त वतनवासी बने या मूल वतनवासी रहे मन की आंख से वतन को देखें, बाप दादा को देखें, राइट साइड घूम जाए, और अब मास्टर दाता का रोल प्ले करें, मुझे सबको देना है, बाबा ने मुझे बहुत दिया है, मुझे भरपूर किया है, मुझे बाप समान मास्टर दाता बन विश्व की आत्माओं को देना है, बैठ जाए। मैं आत्मा लाइट हूँ, लाइट के कार्ब में हूँ, लाइट की वतन में लाइट की ड्रेस में हूँ, बाप दादा के संग मैं वतन से विश्व को देख रही, मैं लाइट हाउस बन विश्व में सत्यता का प्रकाश फैला रही हूँ। डबल लाइट लाइट हाउस फरिश्ता स्वरूप से मैं विश्व की सेवा पर उपस्थित हूँ।